आरवी अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि तभी अचानक किसी ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया। आरवी चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई और सर घुमाकर देखा तो ये शान ही था जो उसको उठाए हुए अब मंदिर से निकलने के लिए आगे बढ़ गया था। पहले तो आरवी उसको वहां देखकर चौंक गई और आंखें फाड़े हैरानी से उसको देखने लगी, पर जैसे ही उसको एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है, आरवी के भाव एकदम से बदल गए। उसने उसकी बाहों से छूटने के लिए छटपटाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, छोड़िए मुझे। आरवी छटपटाती रही, छोड़ने को कहती रही, पर शान की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो चुकी थी और चेहरे पर बिना कोई भाव लिए वो लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। आरवी की आवाज़ सुनकर पंडित जी और बाकी सबका ध्यान भी उस तरफ गया और शान को यूं जबरदस्ती आरवी को साथ ले जाते देख सभी उसको रोकने के लिए आगे बढ़ गए। शान अभी मंदिर प्रांगण में पहुंचा ही था कि पीछे से एक सख्त आवाज़ आई, आप उस बच्चे को उसके इच्छा के विरुद्ध अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। शान के आगे बढ़ते कदम रुक चुके थे और भौहें इकट्ठी हो गई थी। आरवी तो आवाज़ पहचान गई कि ये पंडित जी ही हैं और शान के चेहरे पर पसरते गुस्से को देखकर उसको डर लगने लगा कि कहीं शान उनके साथ कुछ बदतमीजी ना कर दे। आरवी घबराई निगाहों से शान को देखने लगी। शान वापस पीछे की तरफ पलटा और वहां मौजूद सभी लोगों को लगभग घूरते हुए एक एक शब्द चबाते हुए सख्त लहजे में बोला, ये पत्नी है मेरी और मैं उसे किसी भी हाल में यहां से लेकर जाकर रहूंगा और बेहतर होगा कि आप सभी हमारे मामले से दूर रहें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी का पंडित जी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, पति हैं आप उनके तो पहले उनकी इच्छा का सम्मान करना सीखिए। आपके अंदर इतनी भी तहजीब नहीं कि बड़ों से कैसे बता की जाती है। अपनी ही पत्नी के साथ आप इतनी बदतमीजी करते हैं और पति होने का हक जमाकर उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। हमारे होते आप उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें यहाँ से कहीं लेकर नहीं जा सकते। उनकी बातों ने शान के गुस्से को भड़का दिया था। पंडित जी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आखिर वो आरवी को उसके साथ कैसे जाने देते जब कुछ देर पहले ही उन्होंने शान का उसके प्रति रूखा रवैया देखा था। तो शान का चेहरा अब गुस्से से तमतमा उठा। उसका गुस्सा देखते हुए आरवी घबरा गई कि अगर पंडित जी उससे उलझे तो शान गुस्से में उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है और वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए उसने तुरंत ही पंडित जी को देखते हुए कहा, पंडित जी मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। सामने खड़े पंडित जी और बाकी सबने अचरज भरी निगाहों से आरवी को देखा। वहीं शान की हैरत भरी निगाहें भी उसके तरफ घूम गई। आरवी ने तुरंत ही आगे कहना शुरू किया, पंडित जी ये पति पत्नी के बीच का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, अभी मुझे चलना होगा, बाद में कभी आऊंगी आपसे मिलने। पंडित जी अब कुछ कह ना सके, पर वो समझ रहे थे कि एकदम से आरवी अपने बात से क्यों पलट गई। समझ तो कहीं ना कहीं शान भी रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं और जैसे ही वापस आगे बढ़ने लगा, आरवी ने उसको गुस्से से घूरते हुए बोली, भगवान ने मुझे भी दो टांगे दी हैं जिससे मैं खुद से चलकर भी जा सकती हूँ, तो आपको मेरे लिए इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। शान के भाव एक बार फिर सख्त हो चुके थे। उसने आरवी को घूरते हुए कहा, तुम जैसी भगोड़ी लड़की पर मुझे भरोसा नहीं है, अब चुप करके मेरे साथ चलो वरना यहीं नीचे फेंक दूंगा, फिर अपनी टूटी कमर लेकर आती रहना खुद से। शान आरवी को लेकर अब सीढ़ियों के पास पहुंच चुका था। आरवी पहले अविश्वास भरी निगाहों से उसको देखती रही, फिर गुस्से में बोली, आप मुझे डरा नहीं सकते, मैं आपकी नौकर नहीं जो आपकी बात मानूं, मेरा जब मन करेगा तो बोलूंगी और जब नहीं करेगा तब चुप रहूंगी, आपके इशारों पर नाचती नहीं फिरूंगी। तो तुम चुप नहीं रहोगी? शान ने आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए भौं हुचका दी। आरवी जरा भी नहीं घबराई और उसकी निगाहों से निगाहें मिलाकर उसको घूरती रही। अचानक ही शान ने उसको छोड़ दिया। आरवी जमीन पर जा गिरी और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। शान ने नफरत भरी निगाहों से उसको घूरा। अगले ही पल कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, कैसा लगा? अब आती रहो खुद से नीचे और जरा जल्दी आना, क्योंकि फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। शान उसको छोड़कर चला गया और आरवी अपनी पीठ सहलाते हुए नम आंखों से उसको जाते हुए देखती रही। कुछ ही दिनों पहले की बात थी, उसके पैर में कांच से जरा सा जख्म लग गया था, तो शान ने उसकी कितनी केयर की थी और आज वो खुद उसको दर्द देकर अकेला छोड़कर चला गया था। उसकी आंखें बरसने को तैयार थीं, पर उसने उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं दी। अपने दर्द को अपने अंदर जब्त करते हुए किसी तरह उठकर खड़ी हुई और साइड दीवार का सहारा लेते हुए लंगड़ाते हुए धीमे धीमे सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसके हर बढ़ते कदम के साथ पीछे छूट रहे थे खून से सने उसके कदमों के निशान। आरवी बेख्याली में नंगे पैर ही घर से निकल गई थी। उसको अपनी सुध ही नहीं थी, बस शान की कही बातों के बारे में सोचते हुए वो चली जा रही थी। नंगे पैर इतनी दूर आने के वजह से उसके पैरों में छाले होकर फूट चुके थे जिनसे अब खून रिस रहा था, साथ ही कुछ जख्म भी बन गए थे। आरवी से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था, पैरों में असहनीय दर्द हो रहा था, पर वो किसी तरह आगे बढ़ रही थी। शान नीचे कार के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जब कुछ देर बाद भी उसको आरवी आती हुई नजर नहीं आई तो वो गुस्से में वापस ऊपर चला आया और बिना कुछ कहे उसको अपनी बाहों में उठाकर वापस नीचे जाने लगा। आरवी सुनी निगाहों से कुछ देर खामोशी से उसको देखती रही, फिर रुंधे गले से बोली, क्यों कर रहे हैं आप ये सब मेरे साथ? शान के कानों में उसके कहे शब्द पड़े तो उसने चौंक कर आरवी को देखा जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी।
आरवी ने अब आगे कहना शुरू किया। आपने बीती रात कहा था कि आपको नफरत है मुझसे, आप मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, तो मैं आपकी इच्छा का मान रखते हुए सब छोड़कर चली आई। तो क्यों आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए? जब इतनी ही नफरत करते हैं मुझसे, मेरी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्यों मुझे जबरदस्ती वापस ले जाना चाहते हैं? हाँ, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, बेइंतहा नफरत करता हूँ तुमसे, पर तुम इस नफरत से बचकर भाग नहीं सकती। जब तक मैं नहीं चाहता, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। बहुत नफरत करता हूँ मैं तुमसे, और तुम्हें मेरे साथ रहकर पल पल उस नफरत की आग में झुलसना होगा। मुझे बेइंतहा दर्द देकर तुम खुद के हिस्से आए दर्द से भाग नहीं सकती। मेरे दिल को तोड़कर तुम्हें भी दिल टूटने के दर्द से निजात नहीं मिल सकता। अपने गुनाहों से और उसकी सजा से मुंह छुपाकर भागने वालों से बेहद नफरत है मुझे, और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। तुम्हें भी पल पल उस दर्द से तड़पना होगा, गुजरना होगा उस तकलीफ से जो मुझे तुम्हारे वजह से मिली है। ना चाहते हुए भी मेरी नफरत को सहना होगा, और अब से यही तुम्हारी नियति है, जिससे तुम कभी भाग नहीं सकते, कभी नहीं। शान की आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा देखकर आरवी उसकी बाहों में कैद सर झुकाए सिसकने लगी और रुंधे गले से बोली, मुझे सजा सुना रहे हैं, नफरत जता रहे हैं, तो पहले मुझे मेरा गुनाह तो बता दीजिए कि आखिर मेरे किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप मुझे? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। शान ने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया और सामने खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। आरवी भीगी निगाहों से उसे देखने लगी। शान के आरवी को कार के पास खड़ा किया, पर जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई और कदम लड़खड़ा गए। पैरों में जख्म थे और शान ने एकाएक उसको जमीन पर खड़ा कर दिया था। दर्द बर्दाश्त ना होने की सूरत में उसके मुंह से आह निकल गई थी।
शान था तो बेहद गुस्से में। वो उसको छोड़कर दूसरे तरफ जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि उसके कानों में आरवी की आवाज पड़ी और उसके मुड़ते कदम रुक गए। ना चाहते हुए भी उसने पलटकर आरवी को देखा। जैसे ही उसकी नज़र आरवी के लड़खड़ाते कदमों पर पड़ी, उसने आगे बढ़कर तुरंत ही उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया और बड़े ही एहतियात के साथ उसको कार के पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। फिर दूसरी तरफ से आकर खुद भी बैठ गया। उसने आरवी की सीट बेल्ट लगाई और जैसे ही पीछे होने लगा, उसके कानों में आरवी की धीमी सी भीगी हुई आवाज़ पड़ी, क्यों कर रहे हैं आप मेरी इतनी परवाह? जब नफरत है तो मेरी एक आह पर मेरे पास क्यों आ गए? गिरने दिया होता मुझे। उसकी आवाज़ में दर्द छलक रहा था, पर शान पर जैसे अब उसके दर्द का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने नफरत भरी निगाहों से उसे देखते हुए बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, हाँ, करता हूँ मैं तुमसे नफरत, फिर भी तुम्हारी मदद की इसलिए नहीं कि परवाह है मुझे तुम्हारी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें दर्द देने का हक सिर्फ मुझे है। एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तकलीफ़ों से भर दूंगा। इतना दर्द दूंगा कि सह भी ना सकोगी और किसी को कह भी ना सकोगी। तुम्हारे आंसू भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, पर दर्द ना कम होगा और न ही खत्म होगा। आरवी सुन सी उसे देखती ही रह गई। कुछ कहते ही नहीं बना तो खामोशी से बैठी नम आंखों से बेबसी से उसे देखती रही। वजह पूछना चाहती थी, पर जानती थी कि वो नहीं बताएगा वजह, इसलिए खामोश रह गई। शान ने बेरुखी से उस पर से निगाहें फेर लीं और कार स्टार्ट कर ली। कार में अब गहरी खामोशी छाई हुई थी। आरवी खिड़की की तरफ चेहरा घुमाए अपनी भीगी निगाहों से बाहर देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर लब खामोश थे। शान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आरवी के होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कार मल्होत्रा निवास में एंटर हुई और सीधे अंदर के गेट के सामने जाकर रुकी। शान ने दरवाज़ा खोला और बिना आरवी को देखे ही कार से बाहर निकल गया। आरवी अब भी यूं ही बैठी भीगी निगाहों से सामने देख रही थी, पर शायद उसका ध्यान कहीं और ही था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि वो घर पहुंच चुके हैं। शान घूमकर उसके तरफ आया और उसको अब भी यूं ही अंदर बैठे देख उसका पारा हाई हो गया। उसने दरवाज़ा खोला और लगभग चीखते हुए बोला, नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारा जो इतने आराम से अंदर बैठी हुई हो। पहले बिठाऊं भी मैंने, अब क्या बाहर भी मैं ही निकालूं? चुपचाप बाहर निकलो, अगर खुद से नहीं निकली तो घसीटते हुए तुम्हें अंदर लेकर जाऊंगा। आरवी जो किसी ख्याल में गुम थी, वो शान के चीखने पर एकदम से होश में लौटी और तुरंत ही अपने हथेलियों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए कार से बाहर निकल गई। हालांकि जमीन पर पैर रखने पर उसको दर्द हो रहा था, पर जो दर्द शान की बातों से उसके सीने में उठा था, उसके आगे शायद इस दर्द का कोई वजूद ही नहीं रह गया था। शान तो उसको वहीं छोड़कर अंदर चला गया। आरवी एक पल को नम आंखों से उसे देखती रही, फिर अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया था तो सब डाइनिंग एरिया में थे, पर कार की आवाज़ सुनकर अर्पिता जी हॉल में चली आई थीं और वो दरवाजे की तरफ ही बढ़ रही थीं, जब उनकी नज़र शान के पीछे आ रही आरवी पर पड़ी और वो दौड़ते हुए उसके पास चली आईं। कहाँ चली गई थीं आप? पता है हम कितने परेशान हो गए थे आपके लिए। आप इस घर में अनुपमा की अमानत हैं, जिसे आपकी माँ ने बड़े ही विश्वास से हमें सौंपा था। अगर आपको कुछ हो गया होता तो हम क्या जवाब देते उसे? आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपने एक बार भी हमारे, अनु और बाकी सबके बारे में नहीं सोचा।
हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हमें तो आप बहुत समझदार लगती थी, पर आपने आज जो बेवकूफियाना हरकत की उससे हमें खेस पहुंची है। अगर कोई बात हुई थी या शान ने ही आपको कुछ कह दिया था तो आपको हमें बताना चाहिए था। यूं अपना घर छोड़कर जाना सही नहीं था, आप ऐसा कैसे कर गईं? अर्पिता जी उससे काफी नाराज थी। आरवी के घर छोड़कर जाने के फैसले से उन्हें ठेस पहुंची थी। बहुत आहत हुई थी वो और अब शिकायत के साथ साथ उस पर गुस्सा भी कर रही थी। आरवी के कदम तो उन्हें अपने सामने देखते ही ठिठक गए थे। पहले तो वो उनके मुंह से घर छोड़कर जाने की बात सुनकर हैरान हो गई, फिर शर्मिंदगी से उसने अपना सर झुका लिया। आंखों में आंसू भर आए थे। ये सब रिश्ते उन्हीं की वजह से तो हैं बड़ी माँ। जब उन्हें मेरे चेहरे से नफरत हो गई, जब वही मुझे नहीं देखना चाहते तो कैसे रहती मैं यहाँ? आरवी की रुंधी हुई आवाज़ अर्पिता जी के कानों में पड़ी तो उनका शक यकीन में बदल गया कि दोनों के बीच कुछ तो गलत हुआ है। पर अभी उन्होंने उस बात को छेड़ना ठीक नहीं समझा और आरवी की बात पर एतराज जताते हुए नाराजगी से बोली, आप दोनों के बीच क्या हुआ और क्या नहीं हम वो सब नहीं जानना, क्योंकि वो आप दोनों का व्यक्तिगत मामला है और पति पत्नी को अपने बीच की समस्या खुद ही सुलझाना ठीक होता है। पर हम इतना जरूर कहेंगे कि आप दोनों के बीच जो भी है उसे अपने कमरे की चारदीवारी के अंदर रखिए। वहां आप उनकी पत्नी हैं, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं, तब कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। पर कमरे से बाहर निकलते ही आप इस घर की बहू और हमारी बेटी हैं, तो उस एक रिश्ते के लिए आप अपने बाकियों के रिश्ते से मुंह मोड़ लें, अपनी गृहस्थी को छोड़कर चली जाएं, ये ठीक नहीं है। कैसी लग रही है स्टोरी, कॉमेंट करके बताइए।